स्मृतिमिरान्धस्य ध्यानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदा कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सदभक्ताय नमः। भक्त्या विहीनाय पराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारुहे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय नमो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मेतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मानतु। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मे मां शरणं। हम लोगों का गुरु और सचिनंदन गौर हरि राधा कृष्ण के कृपा से भक्ति का प्रचार अच्छा ही चल रहा है। बहुत से लोग नए नए प्रश्नों को करते हैं। सनातन धर्म के संबंध में लोगों की कुछ धारणाएं हैं जिनको उन्होंने गलत तरीके से समझा है, उसके लिए वो लोग प्रश्न करते हैं और उत्तर पा करके बड़े प्रसन्न होते हैं। कुछ लोगों की धारणा थी कि भगवान निराकार है, उसमें कोई गुण नहीं है, किंतु हम लोगों ने ये बतलाया कि भगवान का आकार है, कृष्ण ही उनका आकार है, बहुत सुंदर राम उनका आकार है, विष्णु उनके आकार है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तक उसकी प्रतिष्ठा के लिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं, अपने रूप को लेकर के आते हैं, नया कोई रूप धारण करके नहीं आते, जैसा उनका रूप है उसी को लेकर के उतरते हैं, इसलिए इसका नाम अवतार है। बहुत से लोगों की ये धारणा थी कि हिंदू धर्म में केवल कितने देवता देवियों की उपासना होती है, एक उपासना नहीं। हम लोगों ने उसका भी उत्तर दिया, ये भगवान लोगों की धारणा के अनुसार उनको उन्नत बनाने के लिए बहुत से अवतार धारण करके भक्ति का प्रचार करते हैं, इसलिए वे अलग अलग नहीं है, एक ही है। हमारे प्रभु विभिन्न रूपों में आ सकते हैं, खुदा और अल्लाह शायद उनका भी लिखा है उनके शास्त्रों में जो उनका आकार है, जैसे गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, अपने रूप के अनुसार उन्होंने मनुष्यों को बनाया। तो ये वेद उनमें लिखा कैसे बाइबल में, ये गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, उन गॉड का एक रूप है उसके अनुसार मनुष्यों को बनाया इसलिए उनका आकार है, और यदि नहीं तो उनका पुत्र कैसे हो गए यीशु मसीह, जब बेटा पाप का ही रूप नहीं है तो बेटे का रूप कहाँ से आ गया, इसलिए भगवान का रूप है। और भी कुरान हदीस में भी ये लिखा गया, इन्ना अल्लाह खलाका मिन सूरती, खुदा ताला ने अपने रूप के अनुसार में मनुष्यों को बनाया, यदि उनका रूप नहीं है तो अपने रूप के समान कैसे बनाया, ये तो वेदों की बात है, सते सम इदम अग्रासी, भगवान का रूप था वही रूप लेकर जगत में प्रकट किया, उन्होंने विश्व का सृजन किया, उन्होंने लाखों लाखों योनियों में ये जगत की सृष्टि की। यदि उनमें रूप की पोटेंसी नहीं है, गुण की पोटेंसी नहीं है, तो ये आया कहाँ से? जीरो से कोई चीज नहीं होता, फ्रॉम नथिंग एनीथिंग कैनट बी क्रिएटेड, समथिंग कैनट बी क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग, एवरीथिंग कैन बी क्रिएटेड बाई होल थिंग एंड दैट पूर्णा पूर्णा मदह पूर्णम मद पूर्णम उदुच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्ण, वो भगवान पूर्ण है, इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव माइनस एनी इन्फिनिटिव नंबर, एनी नंबर और इन्फिनिटिव इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, वो सब समय पूर्ण है, वो कभी शून्य नहीं है। इसलिए ऐसी कोई शास्त्र नहीं जिसमें भगवान के रूप की बात नहीं लिखी गई है। कभी कभी हम उनको देख नहीं पाते हैं, अभी रियलाइज नहीं कर पाते, इसलिए उनके लिए निराकार कह दिया, इसलिए इस सब के बातों में भी हमने बतलाया। श्रीमद्भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें वेद उपनिषद शास्त्र सबका सार पुराणों का सार उसमें लेकर के भर दिया। निगम कल्प तरोर गलितंग फलम सुख मुखादमृत दव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोरहो रसिका भुवि भावुका। वेद कल्प वृक्ष हैं, जो कोई कल्पना करेंगे यज्ञों के माध्यम से वो हो जाता है, मंत्रों के उच्चारण से ये हो जाता है, जो कुछ कल्पना करो जो कुछ चाहो वो भी हो जाएगा। और उसका ये पहला पका हुआ श्रीमद्भागवत सार फल है, जिसमें कि गुठली नहीं है न छिलका है, उसमें सभी उपादेय हैं, परम उपादेय है। इसलिए श्रीमद्भागवत को विश्व का सबसे श्रेष्ठ ये ग्रंथ कहा गया। गीता को क्या कहा गया? इन्फेंट्री बुक, पहली पुस्तक धर्मराज्य की गीता को। और भागवत को क्या बात लाया गया? PhD, डीलिट, सबसे उत्तम और ऊंचा क्लास का ये दार्शनिक और सुंदर फल श्रीमद्भागवत। इसलिए गीता से भी श्रीमद्भागवत का स्थान बहुत ऊंचा है। गीता में कुछ उपदेश दिए गए हैं, प्रारंभिक उपदेश दिए गए हैं, अंतिम उपदेश श्रीमद्भागवत में मिलेगा। अभी श्रीमद्भागवत से हम लोग कुछ बतला रहे हैं। परीक्षित महाराज जी राजा थे, बड़े शिक्षित थे, और वो जंगल से गुजर रहे थे, भूमंडल का विजय करके लौट रहे थे, और उनको प्यास लगी। एक ऋषि के आश्रम में गए, उन्होंने पानी मांगा, किंतु ऋषि तो समाधिस्थ थे, ऐसे बैठे हुए भगवान का चिंतन कर रहे थे। वो एकदम देख रहे थे भगवान की लीलाओं को समाधि में, उनको होश नहीं था कौन पानी पिलाता, इसलिए पानी उन्होंने नहीं पिलाया क्योंकि होश में नहीं थे, भगवान का चिंतन में थे। साधारण लोग इस चीज को नहीं समझ सकते। राजा ने कहा, मैं राजा हूँ, चेयर पर बैठ जाइए, असुविधा से चेयर पर बैठ जाइए सामने। तो उन्होंने बतलाया, मैं देश का राजा और प्रजाओं का हित करता हूँ, इसने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैंने पानी भी मांगा, तो ये क्या साधु होगा? साधारण तरह से लोग समझते हैं कि साधु खिलाता पिलाता है बस इतना ही, आत्मा का कल्याण करता है, ये लोग नहीं समझ पाते हैं कैसे। अभी समय नहीं आता तो मैं बतलाता ये कैसे करते हैं उपकार, जो लोग विश्व में साइंटिस्ट लोग नहीं कर सकते उसे अधिक ये लोग करते हैं जगत का उपकार। तो उन्होंने देखा जी इनको उपकार कुछ करना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए। क्या पुरस्कार दें? गले में हार देकर के इनका स्वागत करें। किस चीज का हार? मरे हुए सांप को अपने धनुष के उससे उठा लिया और उनके गले में 3 बार सांपों की माला पहुंची। जो लोग पानी नहीं पिला सकते हैं उनके लिए यही पुरस्कार है, साधु बने हुए ढोंगी है किंतु नहीं समझ सके। थोड़ी देर के बाद में यह बात खबर उनके बेटे को 5 वर्ष की उम्र थी उसको लगी। वो खेल रहा था पास ही में, उसको पता लगा कि किसी ने आकर के हमारे पिताजी के गले में सर्प डाल दिया है। इसलिए वो बहुत क्षुब्ध हुआ, नंगा बेचारा था। वहाँ पर जमुना, वहाँ गंगा का पानी लिया अपने हाथ में और लेकर के राजा को अभिसंपात किया। 7वें दिन तक्षक आकर के तुम्हें काटेगा, जहां भी जिस रूप में हो तू काटेगा, कोई रक्षा नहीं कर सकता है। और ये कह करके रोने लगा, पिताजी के गोद में बैठ करके रोने लगा। पिताजी का ध्यान, अरे बेटा क्यों रो रहा है? तो वो जोर से रोता हुआ लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उन्होंने ध्यान लगाया, अरे ये तो गजब हो गया, महाराज परीक्षित ने हमारे गले में सांप डाल दिया था। बेचारे बड़े सीधे साधे हैं, बड़े धार्मिक हैं, प्यास से, भूख प्यास से छटपट कर रहे थे, इसलिए नहीं समझ सके और भूल से हमारे गले में सांप डाल दिया। और हमारे बेटे ने 5 वर्ष की उम्र अभी मंत्र पूत करके अभी संपात कर दिए, छोड़ दिया, जो 7वें दिन तुमको ये सांप डसेगा, कोई रक्षा नहीं कर सकता। उस समय 5 वर्ष बालकों में भी ये मंत्र की शक्ति थी, अभी भी मंत्र की शक्ति है। जो लोग बड़े ब्रह्मचारी रूप में रहते हैं, बड़े नियम से रहते हैं, उनके मंत्र में अजीब बहुत शक्ति होती है। किसी को खबर दिया कि हम ये आदमी को सांप काट लिया, वो मर रहा है या मर रही है, बस टेलीफोन पर ही थप्पड़ ऐसे लगाया, मंत्र पढ़ करके बस उनका सांप का विष उतर जाता। अभी भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं, मंत्रविद हैं। हमने भी मंत्र का ये देखा है प्रभाव। एक हमारे चाचा जी थे, वो जादू से कहते मिठाई खाएगा, मिठाई पैसा लेगा, पैसा। हम लोग छोटे छोटे बच्चे और हाथों से ऐसे कर देते नोट, 100, 200 के नोट एकदम झरझर झरझर गिरने लगते थे और मिठाइयाँ फुलझड़ी की भांति निकलने लगती थी। और जब उठा करके खाते थे देखता ये कुछ नहीं है। ऐसे मंत्र के प्रभाव हैं। 7वें दिन तुमको तक्षक धरसेगा और कोई नहीं बचा सकेगा। ये जान करके ऋषि बच्चे पर बोले, तू ब्राह्मण का बेटा नहीं, हमारा बेटा नहीं। ब्राह्मण लोग सहिष्णु होते हैं, उनका अपमान करने पर भी बदला नहीं लेते, तुम्हें सहिष्णुता नहीं है। ब्राह्मणों को सहिष्णु होना चाहिए और तुमने ये क्या कर डाला? अब चोरों से रक्षा कौन करेगा, स्त्रियों की रक्षा कौन करेगा, धर्म की रक्षा कौन करेगा? राजा यदि अच्छा नहीं होगा तो प्रजा स्वेच्छाचारी होकर के उदंड हो जाती है, स्त्रियां भी उदंड हो जाती हैं, पुरुष भी उदंड हो जाते हैं। तुमने बहुत खराब काम किया। उन्होंने अपना एक बटु माने विद्यार्थी, उन्होंने भेज दिया, जाओ परीक्षित महाराज को खबर दे दो, वो अभी रास्ते में होंगे कहीं, या राजधानी में पहुंच गए होंगे। ये 7वें दिन वही तक्षक आएगा, काटेगा सांप, तुम जो कुछ करना है कर लो। वो विचार कर रहे थे कि हमने कहीं अन्याय तो नहीं किया, हमने किसी शुद्ध महात्मा के चरण में अपराध तो नहीं किया। यदि सचमुच में वो ढोंगी नहीं हुए और भगवान का चिंतन कर रहे थे तो हमने बहुत बड़ी भारी अपराध किया। प्रभु ही हमारी इस अपराध से रक्षा करे। अब तो मुझे उस सांप से जल करके मर जाना होगा, कहीं हमारा परमार्थ नष्ट न हो जाए। इतने में उसने खबर दी, ये 7वें दिन तुम्हारा निधन होगा, सांप काटेगा, तुम जो कुछ करना है कर लो। बस वो राज्य में लौटे नहीं, अपना राजकीय वस्त्र और धनुष बाण सब रख दिए, गंगा के किनारे पहुंचे, खाना पीना छोड़ दिया और वहीं पर गंगा के किनारे उत्तर के तरफ में होकर के भगवान का चिंतन करने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। और इतने में बेतार का तार खबर हुआ भारतवर्ष के, जहाँ जहाँ हमारे ऋषि महर्षि थे, मिनटों में जाने कैसे उनको खबर लगी, 88,000 ऋषि वहाँ पर उपस्थित हो गए। उस समय इन्होंने हाथ जोड़ करके पूछा, हमारे 2 प्रश्न हैं, कृपया आप इनका उत्तर दें। पहला प्रश्न, जो कोई मरणासन्न अभी मर रहा हो, मरना निश्चित है, अभी मर रहा हो, उसको क्या करना चाहिए। दूसरी बात, जो आज न कल न परसों मरेगा या वर्षों में मरेगा, 100 वर्ष में मरेगा, 1000 वर्ष में मरेगा, मरेगा जो जिसका जन्म हुआ, उन लोगों को क्या करना कर सकते हैं। जो अभी मर रहा है तुरंत अभी, वो क्या करेगा? यदि बहुत बड़ा भारी बिजनेसमैन है, क्या करेगा? व्यवसाय की व्यवस्था तो व्यवस्था करेगा। अभी मर रहा है, हार्ट फेल होने जाने वाला है, या कोई ट्रक और इत्यादि का कार में धक्का लग गया और अभी अंतिम श्वास ले रहा है, उसको क्या करना चाहिए? व्यवसाय वाणिज्य देखेगा ना, दान पुण्य करेगा ना, भगवान का ध्यान लगाएगा ना, क्या करेगा? कुछ भी तो नहीं कर सकेगा। उस समय में उसके कानों में राम राम कृष्ण कृष्ण सुनाओ, इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। यदि सुना दिया, तुलसी हो तुलसी का पत्र उनको दे दो, गंगा जल है उनको दे दो, उनका कल्याण हो जाएगा। और किसी तरह से उनका लिए और कोई कर्तव्य नहीं, भगवान का नाम सुनाओ बस। यदि कर सकते हैं तो कराओ, और नहीं तो सुना दो कान में बस एक बार। इससे बढ़ करके और कोई डॉक्टर के यहाँ ले जाने की, अस्पताल में इमरजेंसी में ले जाने की जरूरत नहीं है। अब तो वो रास्ते में चलते चलते ही मर जाएंगे। उस समय डॉक्टर लोग पास नहीं किसी को आने देंगे, वो अकेले ही हाय हाय करते हुए क्या न जाने क्या क्या चढ़ाएंगे। उस समय में आपको फुर्सत नहीं रहेगी, आप जाकर के उनके कान में नाम सुनाइए या गंगा जल दीजिए, इस पर वो विश्वास नहीं करते। किंतु हम हिंदू सनातन धर्मी मंत्र के बल पर और इन चीजों पर विश्वास करते हैं, इसलिए ये पक्की चीज है। उन्होंने इन दोनों प्रश्नों का उत्तर ये दिया, जो अभी तुरंत मरने वाले हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम अय केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति रन्नता। इन लोगों के लिए बस हरि नाम ही केवल मात्र गति है और कोई नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ हिंदू सनातन धर्मियों में जब कोई मर जाता है तो राम नाम सत्य हुए कहते हैं और उसे ले जाते हैं और उसका संस्कार करते हैं, भागवत की कथा सुनाते हैं उनको और हरिनाम संकीर्तन कराते हैं। आज भी वो सब नियम है। और दूसरी बात, जो अभी मर नहीं रहे किंतु मरना है, वो अपने जीवन निर्वाह के लिए करें कुछ भी, किंतु उनको भी क्या करना चाहिए? भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए। श्रमणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दशक सख्यात्म निवेदनम, भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करें, ठाकुर जी की आराधना करें, उनको प्रणाम करें, नहीं है तो ऐसे ही हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम कर दें, हे जगत गुरु कृष्ण आपके लिए नमस्कार है। नहीं आता है, कृष्ण कृष्ण तो कही सकते हैं, राम राम तो कही सकते हैं, ये बिना पैसे की सबसे बड़ी संसार में दवा है, इसको समझ लिया जाए। अजामिल ने मरते समय में नारायण नाम अपने बेटे का नाम था, उसने पुकारा और उसमें विष्णु को दूत आकर के जम के दूतों को मार करके भगा दिया, मृत्यु से उसकी रक्षा हुई। ये हमारे भागवत में ये वर्णन किया गया, और भी बातें हैं, ये सब भागवत में लिखी गई। इसलिए जो अभी नहीं मर रहे मरेंगे, वो अपने घर के कामों को करते हुए जैसे भी गृहस्थ आश्रम में रहें, त्याग आश्रम में रहें, भगवान का नाम करें, भगवान की कथाओं को सुने और भागवत की बातों को, रामायण की बातों को स्मरण करें, इससे उनको मृत्यु से साजी में सत जाएंगे। इसलिए आप लोगों के सामने अभी हमने मुखबंध किया, अभी हमारे श्रीमान ब्रह्मचारी जी, नवीन कृष्ण ब्रह्मचारी जी आपको श्रीमद् भागवत की जो उपाख्यान है प्रहलाद महाराज, जो हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है, उसके संबंध में संक्षेप में कुछ बतला रहे हैं, आप लोग सुनेंगे। इसके बाद में मैं भागवत की दूसरी कथाओं को मैं वर्णन करूंगा। अब तक आप लोगों ने ब्रह्मचारी जी के द्वारा प्रहलाद महाराज जी के उपदेशों को श्रवण किया, अब मैं आप लोगों को भागवत से कुछ मधुर कथाएं सुना रहा हूं। कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए और जगत पर कृपा करने के लिए अवतार लिया, जगत में आए। देवकी वसुदेव के घर पर कंस के कारागार में उनका जन्म हुआ, साथ ही गोकुल में नंद और यशोदा के घर में भी आधी रात के समय ही एक बेटा हुआ। वहाँ वाला जो बेटा था देवकी और वसुदेव के घर में, वो तो चतुर्भुज था, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। 16 वर्ष की उसकी उम्र थी, बहुत ही खूबसूरत लाजवाब, केश लंबे लंबे घुघराले थे, आंखें बड़ी सुंदर थी और समस्त अलंकार उसमें भरे पड़े थे। किसी को ऐसा बेटा 16 वर्ष का नहीं होता है जो हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र लेकर के पैदा हो, किंतु यहाँ पर ऐसा ही हुआ। और ठीक उसी समय में गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से एक लड़का एक लड़की हुई। लड़का दिव्य श्याम सुंदर, बहुत ही अलबेला खूबसूरत, और उसके बाद ही में एक बेटी और हुई, उसको जोगमाया कहते हैं। ये दोनों एक साथ में हुए। वसुदेव जी उसी लड़के को लेकर के कृष्ण के भगवान के कहने से लेकर के आए गोकुल में, और गोकुल में आते ही चार भुजा वाला जो कृष्ण था वो दो भुजा वाले कृष्ण में मिलकर के एक हो गया। इसको कौन देखा? इसको व्यास जी, सुखदेव जी, नारद जी, ब्रह्मा जी ने देखा, और साधारण लोगों ने नहीं देखा। यशोदा जी ने देखा कि हमको बच्चा तो हुआ किंतु लड़का हुआ कि लड़की हुई, कि लड़का और लड़की दोनों हुई, ये नहीं देखा, और वो आकर के इसमें मिल गया ये भी नहीं देखा। अद्भुत बातें हैं। क्यों हुआ ऐसा? भगवान जो नहीं होने वाली बात है उसको भी कर सकते हैं। एक साथ में लाख जगह पैदा हो सकते हैं, लाख रूप धारण कर सकते हैं, साथ ही साथ लाखों काम कर सकते हैं। भगवान ऐसी अद्भुत अचिंत्य शक्ति जिसकी हम चिंता नहीं कर सकते। इसके बाद में गोकुल में बढ़ने लगे। पूतना आई, कंस ने कहा जे बहन, जरा वो वसुदेव जी का लड़का सुनते जो वहां चला गया नंद गोकुल में, इसको मारना है। बोले जी भाई, हमारे रहते तुमको डर होने की जरूरत है, मैं गई और वो मरा समझो? वसुंधर मैया का वेश बनाया थी तो बड़ी क्रूर डाइंग जैसी थी, बच्चों का भी मांस खाती थी और उनके रुधिर को पान करती थी, रक्त पान करती थी, बड़ी अत्याचारी थी। गोकुल में गई, बड़ी सज धज करके मैया बन करके बड़ी परम सुंदरी बनी और गोकुल में प्रवेश किया। नंद के आंगन में गई, नंद बाबा वहाँ घर पर नहीं थे, वो मथुरा गए हुए कर देने के लिए कंस का, और उस समय पूतना आई। बोली अरे बेटा तू इतना सुंदर, तू मेरा बेटा है, ये तेरी मैया यशोदा इत्यादि तेरी मैया नहीं है, अरे तुमको हृदय से निकाल करके बाहर में रखा है, मैं तुम्हें अपने हृदय में रखूंगी। कृष्ण ने आंख बंद कर दी, उसने अपने स्तन दे दिए और स्तन में कालकूट बीष था, बच्चा तो था नहीं, उसको दूध आता कहाँ से, कालकूट बीष भर दिया। ये बीष के सूंघने से ही मर जाएगा, पीने की तो बात अलग रहे। उसने अपने हाथ से कृष्ण का सिर पकड़ा और एक हाथ से अपना स्तन से पंप किया जो बीष उसके मुख में जबरदस्ती चली जाए, और ज्यों ही ऐसा किया त्यों ही कृष्ण ने उस बीष को भी पान कर लिया, चूस किया, और साथ साथ में उसके प्राणों को भी पी लिया। तू मैया बन करके आई है और मैं तुम्हें मैया बना करके ही छोड़ूंगा? ऐसे हमारे पास में जो आ जाता है उसको मैं छोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं। इसलिए उसके प्राण तक पी गए, उसका शरीर वहीं पर विराट लंबा हो गया। भैया भैया रक्षा करो कह करके चिल्लाने लगी और आकाश में उड़ी। 6 माइल की लंबाई चौड़ाई उसकी थी। कृष्ण। कृष्ण ने कहा जी गोकुल से बाहर तुम्हें मैया, अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बस ऐसे बीच में गिरी, कृष्ण उसका स्तन पीते रहे और उसी पर पारंग से खेल रहे और वो बेचारी वहीं पर ढेर होकर गिरी। कंस का बगीचा था वो सारा टूट फूट करके नष्ट हो गया। पूतना माने क्या? भगवान के भजन में सबसे पहले पवित्र होना चाहिए। पूतना, जो पवित्र नहीं है, जो स्नान नहीं करते, जो सच नहीं बोलते, जो दूसरों से हिंसा द्वेष करते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, ये लोग अपवित्र होते हैं। पूतना में सब प्रकार की अपवित्रता थी। वो रक्त मांस केवल मछली टछली नहीं, लड़कों का मांस और खून पीती थी, इसीलिए आप समझिए, इसलिए कृष्ण ने उसको मार करके उसके शरीर को हटा दिया। परम सुंदरी दिव्य देवता जैसा शरीर धारण करके गोलोक वैकुंठ में कृष्ण की मैया बन करके पधारी। कृष्ण इतने दयालु हैं, ऐसे कृष्ण को छोड़ करके मूर्ख लोग दूसरे का भजन क्यों करते हैं? व्यास जी सुखदेव गोस्वामी ने कहा। इसके बाद में उन्होंने शकटासुर को मारा। अरे भाई, रूप लेकर के यदि जाओगे तो वो देख लेगा तो कृष्ण मार डालेगा, इसलिए रूप मत बनाओ, ऐसे ही चलो। वो लक कोई गाड़ी वहां पर रखी थी, उस गाड़ी में प्रवेश कर गया और कृष्ण नीचे पलने के नीचे झूल रहे थे पलने में, और दबा करके मार डालना चाहा, पीस देना चाहा। मैया रसोई काम में लगी हुई थी, कृष्ण ने खेलते हुए ही ऐसे पैरों से जो खेल रहे थे, कभी मुख में अंगुल लगा रहे थे और खेलने से पैर के अंगुली से ठोकर थोड़ी सी लग गई और वो गिर करके मर गया। माने क्या? जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं अपने को बुद्धिमान मानते हैं किंतु कृष्ण का भजन नहीं करते, वो सब ऐसे ही हैं। ये विद्वता रूपी गाड़ी पर रखते हैं, खूब विद्वान हैं किंतु उस विद्या का कोई भी मूल्य नहीं है। भगवान ऐसे लोगों को वध कर देते हैं। शास्त्र सब पढ़ लिया और नास्तिक कहते हैं क्या? अभी आप लोगों के भी पास में आएंगे या आते होंगे, राम और कृष्ण विष्णु ये भगवान नहीं है, किसी प्रकार से महापुरुष मान लेते हैं किंतु भगवान नहीं मानते, भगवान का रूप नहीं होता। कृष्ण ने गोपियों के साथ में रास किए तो बड़ा भारी अत्याचार किया, बड़ा कामुक था वो, चीजों को समझ नहीं पाते। राम एक महापुरुष थे, भगवान नहीं थे, भगवान का शरीर नहीं होता। ऐसे युक्तियों से साधारण लोगों के मन को खराब कर देते हैं। भगवान क्या करते हैं? ऐसे गधों को असुरों का वध कर देते हैं। इनकी बात को मान करके नहीं चलना है। जिसका रूप नहीं वो भगवान कैसे हो सकता है? जिसमें कोई शक्ति नहीं वो भगवान कैसे होगा? कल हमने कुछ बतलाया था, दूसरी जगह में हमने बतलाया था, जो भगवान का रूप है, उनका गुण है, वे सर्वशक्तिमान हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, जो नहीं होने का उसको भी पलट करके कर देंगे। इस तरह से बहुत से असुरों को मारा। कृष्ण 3 वर्ष के 3.5 वर्ष के हो गए। अब वो कुछ घर से बाहर भी चलने लग गए थोड़े थोड़े। अब उनको रोक रोकना बड़ा भारी कठिन है। तो परब्रह्म समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं किंतु ऐसे बालकों चित्र लीला करते हैं, किसी के घर में चोरी करके मक्खन खा लेते हैं। यदि किसी ने पकड़ लिया घर में, अरे मैया ये तो मेरा घर था, ये मैं समझ करके तुम्हारे घर में आया, ये तो मेरा घर है ना, और तुम हमको पकड़ लिया, मैया मुझे छोड़ दे। एक समय किसी के घर में गए, छोटे से बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के नंगे उसके घर में घुस गए। घुस करके कहा, जैसे कृष्ण जब मक्खन चुराने लगे तो गोपी झट उनके हाथ को पकड़ लिया, आज तुमको मैं दंड दूंगी। और वो मनाती थी, यह भगवान हमारे घर में वो बच्चा कृष्ण कब आ करके चोरी करे मक्खन, और ऊपर से वो इस प्रकार कृष्ण से बातें करने लगी। कृष्ण ने कहा, जी मैया हमने तो मक्खन चुराया नहीं, तो क्या किया, हमारा बछड़ा खो गया, कहीं भाग गया बछड़ा, उसको मैं ढूंढ रहा था।
आ तो तेरा बछड़ा हमारे घर में आएगा और हमारे गगरी में आएगा, घड़े में आएगा। तो हाँ मैया ये इसी में कूद गया। कूद गया कहाँ है तेरा बछड़ा? तो मार्बल का छोटा सा बछड़ा बाबा ने खेलने के लिए दिया था, उसी में उन्होंने पहले डाल दिया और निकाल कर देखो मैया हमारा बछड़ा इसमें। सब लोग हंसने लगे। एक दिन किसी गोपी ने कृष्ण को पकड़ लिया घर में चोरी करते हुए। बड़ा उनको आनंद लगता है, मजा आता है कृष्ण की जब लीलाएं करते हैं। तो कृष्ण को पकड़ लिया, अंधकार अभी था थोड़ा थोड़ा, जब पकड़ लिया मैया ने तो उनको पकड़ करके चली, आज जसोदा मेरी सखी है उसको दिखलाऊंगी ये चोरी करता है। आज एकदम चोर रंगे हाथे ही पकड़ा गया है, आज पकड़ करके जसोदा जी को दे। वो विश्वास नहीं करती है मेरे बात पर, आज तो विश्वास करना ही होगा। वो ले करके, अरे सखी सखी जरा देखो तुम्हारा लाला हमारे घर में मक्खन की चोरी कर रहा है। अच्छा, अरे हमारा बेटा तभी सो रहा है, तुम्हारे घर में कैसे क्या, जरा लाओ तो देखें। ले करके आई, उसका कपड़ा मुंह का हटाया, देखा ये उसी का बेटा था, जो ये कृष्ण नहीं थे, कृष्ण अपने घर में सोए हैं। ये कैसे बात हो गई? गोपी दे करके आश्चर्यचकित हो जाए। इस तरह से अद्भुत अद्भुत लीला करते हैं। एक दिन जसोदा जी ने सोचा कि हमारा लाला